गति श्री राधा मदन गोमनम दिव्य प्रत्यारण श्रीमद राधा श्रीमद राधा श्री गोविंद श्रेष्ठादेवी सर्वनाम स्मरामी श्रीमान दास दस आरती श्री दर्शन गोविंद श्री राधा सब श्री मदन मोहन श्री राधा सब श्री गोविंद चरण श्री राधा सब श्री गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्ण शरण अगर हमने नहीं है तो ये ईर्ष्या को हमें त्यागना पड़ेगा। ईर्ष्या को अपने हृदय में रखकर हम कृष्ण भक्ति नहीं कर सकते, कृष्ण भक्ति करने का दिखावा जरूर कर सकते हैं लेकिन कृष्ण भक्ति हम नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा गया है बहु योनि जदि करे श्रवण कीर्तन तो भी तो न पाए कृष्ण पदे पर। करोड़ों जन्म, एक जन्म नहीं करोड़ों जन्म अगर हम कृष्ण भक्ति करते रहेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहेंगे बहुत ही गंभीरता से, जब तक हृदय में पिशाची हृदय बनते, रूप गोस्वामी कह रहे हैं जब तक हमारे हृदय में कृष्ण ईर्ष्या रूपी जो पिशाचनी है, काम वासना रूपी जो पिशाचनी है, ये ईर्ष्या कैसे दिखती है भौतिक संसार में? ईर्ष्या दिखती है काम वासना के रूप में। इसीलिए चैतन्य चैतन्य को कहा गया आत्मनिर्भर विधि मांझा तारे बने काम, काम वासना की इंद्रिय तृप्ति की परिभाषा ईर्ष्या की परिभाषा दी गई है कि अगर हम अपनी इंद्रियों के बारे में सोच रहे हैं, अपने सुख के बारे में सोच रहे हैं, अपने संतोष अपने आराम के बारे में सोच रहे हैं तो प्रॉब्लम है। माया ने हमें जो बहिरंग शक्ति है उसने हमें इस संसार में बांध के रखा हुआ है दो वस्तुओं से, एक भोग और एक भय। भोग का हमें आश्वासन देके कि हां तुम थोड़ी सी और मेहनत करो भोग मिलेगा और ऐसा सुख मिलेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो भय नहीं करोगे, तुम्हारा घर नहीं चलेगा, तुम्हारे बीवी बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, कोई समाज में तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बूढ़े हो जाओ बीमार हो जाओगे कैसे ख्याल रखोगे? पूरा भौतिक संसार इन दो कारकों के चल रहा है, वो कर रहे हैं बस पूरा भौतिक संसार। चैतन्य महाप्रभु ने इस जो ये इसको जो ये भोग और भय है इसको बोलते हैं भवरोग। चैतन्य महाप्रभु ने इस ईर्ष्या रूपी भोग और भय रूपी भवरोग को खत्म करने का इलाज बताया है। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि किस प्रकार हम हमारा जो स्वभाव बन चुका है ईर्ष्या करना भोग करना हमारा स्वभाव बन चुका है, इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, हम किस प्रकार आध्यात्मिक शक्ति की अंतर्गत शक्ति शिक्षण दे सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम की समीचीन गर्वोटी शिक्षा हमारे नाम मालदेव कीर्तनिया सदा हरि कीर्तन करो हमेशा, लेकिन कैसे करो? हरि कीर्तन करो अपने आप को तृण से भी घास के तिनके से भी तुच्छ मानकर, ये समझ लो कि घास के तिनके पे आपने पैर रखा उसने प्रतिरोध नहीं किया, आप पे कोई पैर रखेगा तुरंत आप बिलगुला जाओ। घास के तिनके में हमारे से ज्यादा सहन शक्ति है, पत्थर को पेट को पत्थर मारो फल देगा, हमें पत्थर मारोगे तो या तो पत्थर मिलेगा या गाली बोलो जो भी मैदा भाई। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का सहिष्णुता का पालन करो, ये बद्ध संसार है यहां पर प्रॉब्लम्स हैं, पदम पदम ये चिंता मन दिशा यहां पर प्रॉब्लम्स हैं, एक्सेप्ट कर लो इस बात को, आप कितना ही अपने आप को सिक्योर कर लो प्रॉब्लम सामने फेस करने पर, वो प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं कैसे? वो प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं सहिष्णुता का पालन करके, सहनशीलता का पालन करके। और चैतन्य महाप्रभु ने सहनशीलता दिखाई सनातन गोस्वामी के माध्यम से, अपने भक्तों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि किस प्रकार सहिष्णुता का पालन किया जाए। और जब मेरे मां पुत्र ने कहा देखो कभी मान की अपेक्षा न कभी सम्मान की आकांक्षा मत रखना, क्यों नहीं रखना? क्योंकि पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्रे विष्ठा, हम लोग कितना सुगंधित खाना खाते हैं लेकिन परिणाम क्या निकलता है? बहुत ही बदबूदार मन त्याग करते हैं लेकिन सुअर तो खाई बदबूदार मन रहा है, उसकी विष्ठा कैसी होगी? तो हमारे आचार्यों ने पूजा लाभ प्रतिष्ठा की तुलना सुअर के मन से की है। इतनी खराब है कि हमें कोई सम्मान देगा, कोई हमारी प्रशंसा करेगा, इतनी खराब है कि यही चीज हमें इस भौतिक संसार में बांधे रखती है। हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन यही सोचते रहते हैं आप वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे। अरे क्या परवाह करनी है यार, माला उठाओ जब करो। लोग अपनी पूरे संसार में जाके जोर जोर से नाचेंगे, माला करेंगे, अपनी गली में नहीं करेंगे। अपनी गली में शर्म आती है, लोग जानते हैं, वो बोलेंगे अरे ये क्या कर रहे हो भाई, तो क्या जवाब देंगे? हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाए। अरे लोगों को सरेआम सिगरेट शराब पीने में शर्म नहीं आ रही, आपको माला करने में शर्म आ रही? मान सम्मान की परवाह मत करो, मान सम्मान आपके हाथ में है ही नहीं। अगर आपको कुछ मान सम्मान मिल रहा है तो भगवत कृपा से आपके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, पूर्व जन्म के फल के कारण मिल रहा है। अगर आप मान रहे हैं तो भी आपके अपने पूर्व जन्म के कारण है, कुछ नहीं कर सकते उसमें। चैतन्य महाप्रभु कह रहे सब कुछ आपके सामने आएगा, प्रभावित मत होना, फेस करते रहना। अगर फेस करोगे और इस तरह से आप जप करोगे तो अवश्य कृष्ण में मिलने की संभावना है, अवश्य अंतर्गत शक्ति का की शरण हम प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों के लिए क्या है, जैसे आप सब लोग अभी इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों का टेस्ट अभी आधे घंटे में आएगा जब प्रसाद मिलेगा, तो देखेंगे हम कितना त्रिनाथ समीक्षण का पालन करते हैं, तो पता चल जाएगा आपको अपनी पोजिशन का और दूसरों की पोजिशन। आसान नहीं है, आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो महाप्रभु ने सिर्फ 8 श्लोक बोले, उसमें से 1 श्लोक भी बोल दिया। अगर इतना ही आसान होता, इतना ही सुलभ होता तो क्यों टाइमलेस करने बोलने में मुश्किल है? त्रिनादित्य सुनी चयन का मतलब है कि दूसरों को अपने से आगे रखो, दूसरों के सुविधा के बारे में, दूसरे भक्तों की सुख के बारे में सोचो, अपने आप को पीछे रखो। एक तो आइटम खत्म हो जाएगी, कोई आपस नहीं आ जाएगी, क्या हमें पढ़ने वाला है? सुबह परिणाम को ये होने वाला है, सुबह परिणाम को ये होने वाला है। सो अगर हम कृष्ण को सेवित अगर हम कृष्ण को सेवित देखना चाहते हैं करोड़ों लक्ष्मियों के द्वारा, चिंता मरी प्रकट सर्वसू कर्म रक्षा रक्षा प्रदेश सुरभिर अभी पाले, तब लक्ष्मी सहस्त्र शत संग्रह से मानी। अगर हम देखना चाहते हैं कृष्ण को करोड़ों गोपियों के द्वारा सेवित होते हुए, तो हमें अपनी इस ईर्ष्या को त्यागना पड़ेगा, हमें अपनी ईर्ष्या को सेवा भाव में बदलना पड़ेगा, हमें अपने बारे में ना सोचकर दूसरे वैष्णवों के बारे में सोचना पड़ेगा। प्रभुपाद के बारे में सोचना पड़ेगा, इस समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। और हम आज जीवन अगर इसका अभ्यास करेंगे तो संभावना है कि हम इस ईर्ष्या रूपी व्याधि को रोग को हार कर पाएंगे। अगर हम भगवान की जो नित्य लीला है, अगर उसके दर्शन करना, भगवान की नित्य लीला में दर्शन करना इतना आसान काम नहीं है। लक्ष्मी तक भगवान की लीलाओं के, भगवान की ब्रज लीलाओं के दर्शन नहीं कर पाते। लक्ष्मी भी विष्णु की सेवा त्याग कर, सारे ऐश्वर्य छोड़कर एक साधारण ब्रज बाला की तरह वृंदावन में आपकी सेवा करती है, हजारों साल तपस्या करती है, गाय का गोबर उठाती है, बाल्टी में जमुना जैसे पानी भर के लाती है खड़े में और दूर दूर तक लेके जाती है सेवा के लिए, प्रसन्न करने के लिए कि किसी न किसी प्रकार से मैं भगवान की जो लीलाएं हैं उसका आस्वादन कर सकूं। तो जब लक्ष्मी जी के लिए इतना कठिन है, इतना दुर्लभ है भगवान की लीलाओं को देखना, समझना, उनमें भाग लेना, तो आप समझो कि हमारी क्या हालत है। हमारी बहुत मुश्किल हालत है और हमारी इतनी मुश्किल हालत है जानकर हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए चैतन्य महाप्रभु और शरण भगवान कि जो चीज लक्ष्मी जी के लिए दुर्लभ है वो चैतन्य महाप्रभु ने और शरण भगवान ने सुलभ कर दी। राधा कृष्ण की सेवा अनायास प्रदान कर दी। इस बात को बहुत समझने की आवश्यकता है। पृथ्वी भी हर जीव का बोझ वहन कर लेती है, पृथ्वी का बोझ वहन नहीं करता। अगर हम चैतन्य महाप्रभु श्री प्रभुपाद के प्रति अपनी कृतज्ञता नहीं अगर दिखा सकते तो पृथ्वी हमारा बोझ भी सहन नहीं कर पाएगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि लक्ष्मी जी को भी जो सेवा दुर्लभ है वो चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रभुपाद ने हमें प्रदान करती है। इसके लिए हमें करोड़ों जन्म भी अगर श्री प्रभुपाद के चरणों में निछावर करने पड़े तो हमें संकोच नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद है वासुदोष, उन्होंने एक भजन लिखा है यदि गौर न हो तो तबे की मजबूर के मने धनिता दे। अगर चैतन्य महाप्रभु न थे तो क्या होगा, कैसे अपना शरीर धारण कर पाते, कैसे हम जीवन का निर्वाह कर पाते, हमारे लिए क्या आशा की किरण थी। यदि गौर न हो तो तबे की हो तो क्या होता, के मने धनिता दे राधा महिमा प्रेम जगत श्रीमती राधा रानी की जो महिमा है बहुत सारे लोग विशेषकर आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जय राधे जय राधे। मैं भी बोल सकता जय राधे, मैं अपनी माँ को सम्मान से बुलाऊंगा हमेशा, मैं उनको जय राधे नहीं बोल सकता, मैं हमेशा श्रीमती राधा रानी बोल सकता। मुझे अधिकार प्राप्त नहीं है, हो सकता है कि उनको प्राप्त कर, मैं श्रीमती राधा रानी को कभी जय राधे नहीं कहूंगा, वो मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को इस तरह से कैसे बुला सकता हूं। हो सकता है दूसरे लोग उस स्तर पर होंगे, मैं नहीं, मुझे नहीं पता आप हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बताया श्रीमती राधा रानी की महिमा के बारे में, श्रीमती राधा रानी कितनी महान है, कृष्ण स्वराट है, कृष्ण परम ईश्वर है, लेकिन कृष्ण तीन चीजें नहीं जान पाते। भगवान कृष्ण सब जानते हैं, तीन चीजें नहीं पता लगा सकते। कृष्ण के प्राकृत्य का कारण भगवान ने कृष्ण ने स्वयं बताया है भगवद गीता में। क्या बताया? परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्ट नाम धर्म संस्थापनाय संभवामि। ये जो तीन कारण है ये बाह्य कारण है, बाह्य कारण है। अंतरंग कारण भगवान से प्रकट होने की कुछ और है। चैतन्य चैतन्य में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान जब इस धरा धाम में प्रकट होते हैं तो उनके प्रकट होने का अंतरंग कारण रूपा गोस्वामी ने बताया। ऋषि देव कि अपने इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करो, अपने सुख की कामना मत करो, क्योंकि जैसे ही अपने सुख की कामना आएगी वैसे क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर प्रेमी वांछा कार्य बड़े काम। कृष्ण प्रीति इच्छा भरे प्रेम, जो कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करने की जो इच्छा है वो प्रेम है। लेकिन अगर छाया भी आ गई, जरा सा आभास भी आ गया अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में, तुरंत वो प्रेम काम में बदल जाता है, तुरंत वो प्रेम काम में बदल जाएगा। सारी गोपियां पूरा व्रत जो है वो कृष्ण की सेवा करने लगा, अपने बारे में नहीं सोचते। कई बार हमें लगता है कि जो ब्रजवासी अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, लेकिन वास्तव में उसमें भी कृष्ण की सेवा ही छिपी होती है। इसीलिए कहा गया है कि अगर कृष्ण कथा सुननी है तो कृष्ण भक्तों से सुनिए। कृष्ण भक्तों के मुख से, परंपरा से अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में होता है। अगर हम श्रील प्रभुपाद से और श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, श्रील प्रभुपाद की जो परंपरा है, अगर हम उसके माध्यम से अगर हम नहीं सुनेंगे कृष्ण कथा, हमें नहीं समझ में आ सकती, हमें कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि आखिर ब्रजवासी कुछ काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। पता लगाने के लिए दो कारक ही, हमारा प्रयास और प्रभुपाद की कृपा। अकेले आपके प्रयास से तुम्हें पता नहीं चलेगा, जब तक प्रभुपाद की कृपा निहित नहीं होगी। और प्रभुपाद की कृपा आपको मिलेगी प्रभुपाद के प्रति निष्ठा से, प्रभुपाद के शिष्यों के प्रति निष्ठा से, तो पता चलेगा कि वास्तव में ब्रज में भूखा है। सो जब हम देखते हैं कि ब्रजवासी कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आग लगने तो सारे इंद्र ने वर्षा कर दी, तो सारे ब्रजवासी दौड़ गए कृष्ण के पास, कृष्ण कृष्ण महापाल, हे कृष्ण आप बहुत वर्षा ने हमारी रक्षा करो। क्यों बोला? ताकि कृष्ण का यश बढ़ेगा, कृष्ण का यश बढ़ेगा। अपनी चिंता नहीं कर रहे, अपनी सुरक्षा अगर वो चाहते हैं तो अपनी सुरक्षा भी क्यों चाहते हैं? क्योंकि कृष्ण की सेवा में वो शरीर लगना है। अगर वो शरीर नहीं रहेगा तो कृष्ण की सेवा कैसे कर पाएंगे, कृष्ण को सुख कैसे प्रदान कर पाएंगे? कृष्ण प्रिय प्रीति इच्छा भय प्रेम का, कृष्ण की इंद्रियों की अगर हम सुख पहुंचाएंगे तो क्या कृष्ण की इंद्रियों को सुख पहुंचाने का मतलब है हमें कुछ नहीं मिलेगा? हमारे लिए क्या है? श्रीमती राधारानी और गोपियां हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा में रहती हैं, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचती हैं, तो क्या उनको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कृष्ण हैरान है कि जितना सुख इन गोपियों से मुझे मिल रहा है, जितना सुख श्रीमती राधारानी से मुझे मिल रहा है, उससे कहीं अधिक सुख श्रीमती राधारानी को मुझसे मिल रहा है। तो श्रीमती राधारानी के मन में क्या चल रहा है? श्रीमती राधारानी मेरे किन गुणों से किस सीमा तक प्रभावित हो रही है? मेरे क्रोध से उनको क्या सुख प्रदान कर रहे हैं? मेरे सुख से उनको किस हद तक सुख प्राप्त हो रहा है? ये तीन चीजें जानने के लिए भगवान कृष्ण ने बहुत कोशिश की, नहीं समझ पाए, तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं श्रीमती राधा रानी का जो भाव है वो जब तक स्वीकार नहीं करूंगा तब तक मैं ये जान नहीं पाऊंगा कि श्रीमती राधारानी मुझे सुख की प्राप्ति होगी। और जब भगवान कृष्ण ने ये सोचा तो भगवान कृष्ण श्रीमती राधारानी का भाव स्वीकार करके चैतन्य महामूर्ति लिखे इस महामंदिरा नाम पर आदरणीय चैतन्य महामूर्ति श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नानी अन्य। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि श्रीमती राधा रानी का भाव क्या है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने अपने से पहले उनके गुरु आए कृष्णपुरी, उनके गुरु आए श्री माधवेंद्र और श्री माधवेंद्रपुरी के द्वारा उन्होंने श्रीमती राधा रानी की जो मानसिकता है वो मानसिकता प्रकट की चैतन्य महाप्रभु ने। माधवेंद्र पुरुष की बात शरीर छोड़ने तक एक ही श्लोक को बार बार रखते थे, एक ही श्लोक को बार बार रखते थे और वो श्लोक क्या था? कई दीन दयाल नाथ दे मथुरा नाथ कदा अवलोक हृदय तक अलोक कातरम दैत नामे थी किम करोमी हम, किम करोमी हम, मैं क्या करूं? किम करोमी हम, मैं क्या करूं? कातर मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, कातर होता है। तो श्रीमती राधा रानी कह रही है हे नाथ, हे कृपालु स्वामी, हे मथुरा नाथ, मैं आपके द्वारा दर्शन कब कर पाऊंगी? श्रीमती राधा रानी बोल रही है। ये लाइन श्रीमती राधा रानी के प्लीज नोट कर लेना, वो कह रही है कि हे कृष्णा मैं आपके दर्शन कब कर पाऊंगी? और चैतन्य महाप्रभु के जो छह मुख्य शिष्य थे वो भी यही कह रहे थे हे राधे ब्रजदेव की चरण के हे नंद सुनो कि हे कृष्णा, हे श्रीमती राधा रानी हम कहां हैं? मैं आपको क्यों नहीं, हम आपको क्यों नहीं देख पा रहे? वो ये नहीं कह रहे थे कि हमने देख लिया, एक्चुअली में वो देख रहे थे, वास्तव में वो देख रहे थे, लेकिन क्या बोल रहे थे? कहां हूं आप, हम कब आपके दर्शन कर पाएंगे? श्रीमती राधा रानी का भी यही भाव है। श्रीमती राधा रानी के भाव की महिमा क्या है कि वो कृष्ण के साथ है, कृष्ण के साथ रहते हुए भी विनय का अनुभव कर रही है। प्रियतम सामने नहीं हो विनय समझ में आता है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ है, कृष्ण की साक्षात सेवा कर रही है लेकिन विनय का अनुभव कर रही है। ये श्रीमती तो बोल रही है कि मैं आपके द्वारा दर्शन कब कर पाऊंगा? आपको ना देखने के कारण मेरा कातर हृदय व्यथित हो चुका है, मेरा हृदय व्यथित हो गया है। ये प्रिय अब मैं चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्र पुरुष प्रकार के द्वारा श्रीमती राधा रानी की जो भाव है, चेतना है, वो प्रकृति, और चैतन्य महाप्रभु ने ये समझाया कि हमें भगवान कृष्ण को श्रीमती राधा रानी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। वो जगत के स्वामी हैं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उनको सस्ते में नहीं ले सकते। अगर हमने उनको सस्ते में ले लिया तो बहुत प्रॉब्लम है। भगवान अनजान व्यक्ति के द्वारा अपमान सह लेते हैं, लेकिन अगर उनकी अपनी संतान अगर ठीक से सेवा नहीं करेगी वो नहीं सकता। अपने घर को ले लो, आप यहां से घर जा सकते हैं, रस्ते में अगर किसी से लड़ाई हो जाए सड़क पर चलते चलते तो कितनी देर याद रखोगे, लेकिन अगर भाई बहन मामा से लड़ाई हो जाए पूरा जन्म याद रखते हैं, रखते नहीं रखते। आप सब कृष्ण की सेवा में जुड़ चुके हो, कृष्ण को समर्पण कर दिया। अगर अब आपने ध्यान से गंभीरता से कृष्ण की सेवा नहीं की तो कृष्ण को चैन नहीं। ये बात बहुत ही ध्यान रखते ना, चैतन्य महापुरुष का बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सावधानी से, आखिर हम जगत के स्वामी की सेवा में रहते हैं। हम किसी साधारण व्यक्ति से व्यवहार नहीं करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी के भाव व्यक्त किए स्वयं शिक्षाष्टकम में, और चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये हमारा गोल है, ये हमारा लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी के भावों पर, श्रीमती राधा रानी क्या सोचनी है कृष्ण सेवा के बारे में, चैतन्य महाप्रभु ने बताया जो शिक्षाश्रम का आठवां श्लोक है। आप सब मेरे साथ बुरा सकते हो, कितने लोगों को आता है, तो आप सब मेरे साथ, जिसको नहीं आता प्लीज कन्फेस करो, प्लीज कन्फेस करो, रोज उसको दोहराना। चैतन्य महाप्रभु ने बोला आश्रिष्य पादरताम कृष्ण माम अदर्शनान मर्मनाम गुरु ना करा, आप मुझे गले लगा लो, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे अपने चरण कमलों से रौन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम दर्शन तो दे रहे हो। आप मुझे दर्शन भी ना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम मुझे यह तो पता है कि आप मेरे बारे में सोच रहे हो। आप किसी और के बारे में सोचना शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप करोगे जन्म जन्मांतर तक आप ही मेरे प्राणों के नाथ हो, और कोई ना प्राण और कोई। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुभव के द्वारा बताया कि कृष्ण प्रेम वास्तव में है क्या। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि जो कृष्ण प्रेम है कोई सस्ती आसान वस्तु नहीं है। कृष्ण प्रेम जो है जो श्रीमती राधा रानी आस्वादन कर रही है, उसका इतना खौटा हुआ रस है तो क्या वो फेंकते हैं? फेंका भी नहीं जा रहा क्योंकि इतना रसीला है। ये कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम जो है उसमें विरोधाभास है। कृष्ण प्रेम सांप के जहर से भी तीक्ष्ण है, बिल्कुल स्तब्ध कर देगा, और लेकिन चंद्रमा से भी अधिक शीतल है, मरने भी नहीं देगा, मरने भी नहीं देगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला ऐ प्रेम आस्वादन तप्त इक्कु चरमन, बिल्कुल खौलते हुए इच्छुक मतलब होते घटना तप्त इक्कु चरमन, मुख ज्वले ना जाए तजन, मुंह जल रहा है लेकिन छोड़ नहीं पा रहा, मुंह जल रहा है छोड़ नहीं पा रहा। सही प्रेमा यार मने तार विक्रम सही जाने, समझ नहीं सकता कोई भी इसको, कौन समझ सकता है जिसके पास में एक कृष्ण प्रेम है। यही प्रेम यार मने तार विक्रम सही जाने, विषामृत एक तत्व मिलन, विष और अमृत इकट्ठे हो गए, विष मार रहा है और अमृत मरने नहीं दे रहा है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने खर्चा लिखा जो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को सुनाया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने आगे बहुत सारे भक्तों को सुनाया, उन भक्तों में से एक थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की जो हालत थी वो उन्होंने चैतन्य चरितमृत में लिखी, हम सबको पढ़ना चाहिए। उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा लगता था कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दो परस्पर विरोधी योद्धा आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ तो रहे हैं लेकिन असर चैतन्य महाप्रभु के शरीर पे हो रहा है, असर चैतन्य महाप्रभु के शरीर पे हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु का शरीर जब अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में प्रकट होते थे तो शरीर उनका एकदम टूट जाता था, उनका चैतन्य सारे भाव देख के विचलित हो जाते थे कि आगे चैतन्य महाप्रभु कब तक इसको सह पाएंगे। और श्रीमती राधा रानी इस अष्ट सात्विक विकार की प्रतिमूर्ति है, साक्षात मूर्ति है वो श्रीमती राधा। कृष्ण अगर मदन मोहन है, कृष्ण अगर कामदेव को मोहित करने वाले हैं, तो श्रीमती राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है। श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण को भी मोहित करने वाली है, कृष्ण को भी अपने वश में करने वाली है। तत्व की दृष्टि से कृष्ण सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन रस की दृष्टि से भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के अधीन है। श्रीमद भगवान कहते थे किलोड़ी की तरह, एक किलोड़ी की तरह। कृष्ण बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव जानामि अहम्, आप जैसा मुझसे व्यवहार करोगे मैं आपसे वैसे व्यवहार करूंगा, लेकिन श्रीमती राधा रानी के सामने ये वचन झूठा पड़ जाता है। नहीं कर पाते और उन्होंने बोला, कृष्ण ने बोला श्रीमती राधा रानी के लोगों को, मैं नहीं चुका सकता आपका ऋण, जो आप जो सेवा आपने मुझे की है, जो सुख आपने मुझे प्रदान किया है, मैं उसका प्रतिकार नहीं कर सकता, अनेक जन्म के लगा तो भी नहीं कर सकता। हम क्या समझे इससे, हम कैसे इस बात को समझे कि श्रीमती राधा रानी महान है, लेकिन वो महान सेवा के माध्यम से हमारे लिए साधना अवस्था में हमारे लिए क्या संदेश है, राधा शंकर हमारे लिए संदेश है कि हमें अपना तन मन धन श्री प्रभुपाद के चरणों में निशावर कर देना चाहिए। श्री प्रभुपाद श्री राधा रानी की कृपा के प्रतिनिधि है। श्री प्रभुपाद ने वो रहस्य, वो खजाना जो कि ना तो हम अधिकारी हैं और ना ही हमारे पास पहुंचने का कोई साधन था, श्री प्रभुपाद ने हमारी तरफ पहुंचा दिया। हमारा कर्तव्य है कि हम श्री प्रभुपाद के प्रति हमेशा सदैव कृतज्ञ बने रहें और जितना संभव है हम श्री प्रभुपाद के इस मिशन, इस कॉन जो है इसको आगे बढ़ाने में और भक्तों को जोड़ने में हम अपना सर्वस्व बचाव करें, तब वास्तव में कहा जा सकेगा कि हम राधा कृष्ण की महिमा को जान पाए, हम श्रीमती राधा रानी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, हम श्रीमती राधा रानी के सेवकों के सेवक हम बनना चाहते हैं। अन्यथा हम बोल सकते हैं श्रीमती राधा रानी की जय, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम प्रैक्टिकल लेवल पे व्यवहारिक रूप से जब तक हम श्री प्रभुपाद की सेवा नहीं करेंगे, हमारे लिए और कुछ आगे बढ़ने की आशा नहीं है। हरे कृष्ण।